अगली सूरत नमल चींटी। एक शख्स था तो किसी जगह कुछ ख़रीदने के लिए खड़ा था, बुज़ुर्ग थे वो। तो एक बड़ी मॉडस्कॉट सी औरत आई, कहने लगी मुझे एंट किलर चाहिए। कहने लगी कि वो आपके स्प्रे है चींटियों को मारने वाला? वो दुकानदार जो था उसकी तो कली खिल गई, क्योंकि बहुत थोड़े लोग ख़रीदते हैं। जी 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 है, मैं लेके आता हूँ। खैर वो अंदर गया, ढूंढने लगा। वो जब बुज़ुर्ग थे तो उस जवान बच्ची से कहने लगे कि बेटा आप ये स्प्रे क्यों लेके जा रही हैं? कहने लगी कि मैं चींटियों को मारूंगी। कहा क्यों मारेंगी? कहा इन्होंने मेरा जीना दोबर किया हुआ है, अब क्या करें? कहा तुम इनके सब वो क्यों नहीं करती जो तुम्हारी नानियाँ और दादियाँ करती थी? कहा वो क्या? कहा देखो ये अल्लाह की मखलूक हैं, मिट्टी में रहती है, जब इनको भूख लगती है ना तो बाहर आती हैं। अगर तुम इनकी बिलों के पास आटे की चुटकी चुटकी डाल दोगी ना तो ये नहीं आएंगी। क्यों? इसलिए कि इनकी दुआओं से रिस्क मिलता है। और उसके ऊपर फिर कमेंट था जिसने भी दिया, और मैंने ये आज की बात में शेयर भी किया हुआ है कि पहले दौर में घरों में बरकत थी, अब क्यों नहीं? क्योंकि हमारे रिस्क में से ये बेजान मखलूकात भी खाती थी। आज हमने सारी पेट स्प्रे और फलां स्प्रे कर करा के सब कीड़े कुड़े मार दिए। मैं ये नहीं कहती कि घरों में कीड़े होने चाहिए, लेकिन आप ज़रा देखिएगा कि सूरत नमल क्यों है। की बात पे पीछे भी पढ़ के आए, शहद की मक्खी ना हल्दी, ये नमल है। आइए सूरत में और दुनिया के अमीर तरीन बादशाह का किस्सा हम पढ़ने लगे चुनटी के नाम पर। सुभान अल्लाह। ये सूरत नमल इस पारे में शुरू होती है और 59 आयते हैं। अगले पारे में ये कंटिन्यू होगी। 27 नाम की सूरह और नमल चींटी को कहते हैं। ये तो अब मैंने भी आपको बता दिया बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन। तिल्का आयातुल कुरआनी व किताबिम मुबीन। पहली 14 आयत हैं। रुकू नंबर 16, अल्लाह का मूसा से पहला कलाम। फिर दोबारा मूसा की स्टोरी। एक ही बारे में हर सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम बहुत है, इससे लगता है कि अल्लाह को उनसे बहुत मोहब्बत है। तौसीन, ये आयतें हैं कुरान की, यानी वाज़ह और रोशन किताब की, हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखरत पर यकीन रखते हैं, और जो लोग क़यामत पर ईमान नहीं रखते, हमने इन्हें इनके करतूत जीनदार कर दिखाए, बस वो भटकते फिरते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अज़ाब है और आखरत में भी वो सख्त नुकसान जाफ्ता हैं। बेशक आपको अल्लाह अलीम व हकीम की तरफ से कुरान सिखाया जा रहा है। याद होगा जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहाँ से या तो कोई खबर ले आऊँ या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊँगा ताकि तुम सेंक ताप सको। जब वहाँ पहुँचे तो आवाज़ दी गई कि बबरकत है वो जो इस आग में है, और बरकत दिया गया वो जो इसके आसपास है, और पाक के अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला। मूसा सुन, बात ये है कि मैं ही अल्लाह ग़ालिब बा हिकमत। आपको मूसा के साथ अल्लाह का कलाम कैसा लग रहा? बड़ा बोल्ड है। मैं अल्लाह हूँ। और मूसा ये क्या है? तू अपनी लाठी डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इसे हिलता जुलता देखा इस तरह गोया कि वो एक सांप है तो मुंह मोड़े हुए पीठ फेर कर भागे और पलट कर भी न देखा। ऐ मूसा खौफ न कर, मेरे हजूर में पैगंबर डरा नहीं करते, लेकिन जो जुल्म करें फिर इसके इवज़ नेकी करें, हर इस बुराई के पीछे तो मैं भी बख्शने वाला मेहरबान हूँ। और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल, वो सफ़ेद चमकीला होकर निकलेगा बगैर किसी ऐब के। तो नौ निशानियाँ लेकर फिरौन और उसकी कौम की तरफ जा, यकीनन वो बदकारों का गिरोह है। बस जब इनके पास आंखें खोल देने वाले हमारे मौजज़े लेकर पहुँचे तो कहने लगे ये तो सिर्फ जादू है। उन्होंने इनकार कर दिया हालांकि इनके दिल यकीन कर चुके थे सिर्फ जुल्म और तकब्बुर की बिना पर। बस देख लीजिए कि इन फितना फैलाने वालों का इंजाम कैसा हुआ। क्या खूबसूरत दो टोक का आगाज़ है। आप देखिए तो इसमें से ज़रा सा सहाबा कराम की कुछ खूबियाँ नोट करते हैं। कुरान को हिदायत के लिए पढ़ा, नमाज कायम की, ज़कात दी, दुनिया की जीनतों की तरफ मायल नहीं हुए और अपनी इस्लाह की फ़िक्र में लगे रहे। अल्लाह हमें भी ऐसे ही बना दे। आपके मेरे अमल के नुक्ते, कुरान से हिदायत लेना है, नमाज की पाबंदी करनी है, ज़कात अल्लाह की रज़ा की खातिर अदा करनी है, آخرت پر یقین رکھنا ہے، اس بات پر ایمان کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور غرور اور تکبر میں آ کر حق کو نہیں جھٹلانا۔ آگے ہے قصہ حضرت داؤد اور سلیمان کا، باپ بیٹا بھی تھے، نبوت اور بادشاہت ان کے دور میں اکٹھی ہو گئی تھی، یعنی پیسے والے لوگ نبی بنتے تھے۔ 15 سے 31، 15 سے 31، رکوع نمبر 17۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، حضرت داؤد اور سلیمان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نوازشات، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف و صلاح کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مال میں بڑے ہوئے اور رش کس پہ کریں؟ ایمان والوں پہ۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر، جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، ہر ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے، کیا مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، میرے ماں باپ پر، اور ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، یہ کیا بات ہے، میں خود کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی غیر حاضر ہے؟ آپ میں تو نہیں کوئی غیر حاضر، وہ ہے ہی نہیں تو اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ بہرحال پوچھ رہے ہیں کدھر گیا، یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری کہ آ کر اس نے کہا، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں، میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھا دیے اور صحیح راہ سے روک دیا۔ کیا پتا چلا؟ ایک پرندے کو حیرت ہو رہی ہے لوگوں کو شرک کرتا دیکھ کر، اور ایک عورت کو حکمران بنتا دیکھ کر۔ آج ہم انسان اپنے بارے میں سوچے کہ ہمیں کبھی اچھے برے کا فرق بھی محسوس ہوا؟ ہر چیز ہی ٹھیک لگتی ہے۔ بہرحال شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر لاتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے، میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگیں، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور جو بخشش والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ کیا پتہ چلا؟ ملکہ سبا میں خیر ہے، اس لیے اللہ نے اس کو پیغام دلوایا اور اب اس کا دل نرم بھی ہو رہا ہے۔ پھر آیت 15 سے 17 میں حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی فضیلتیں دیکھ لیجئے، علم کی دولت، بادشاہت، پیغمبری، لوہے سے زرے بنانا، پرندوں کی بولیوں کو سمجھنا، ہوا اور جنات کو مسخر کرنا۔ آج اگر کسی کے پاس یہ سب کچھ ہو تو کیا کرے؟ شوب دے دکھا دکھا کر پیسے لے گا۔ اس نبی نے بھی انسانیت کی خدمت پہ مال وقف کر دیا۔ آج آپ کے میرے پاس بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اس کا بہترین مصرف صدقہ جاریہ ہے۔ کیا سیکھا؟ اللہ کی رضا کے نقطوں کے لیے راضی رہنا ہے کہ اللہ جس پر چاہے اپنی فضیلت نواز دے، یقین رکھنا ہے کہ معجزے اور کمالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، برے اعمال کو خوش نما نہیں سمجھانا، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ شکر گزار ہونا، اس بات پر ایمان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ इंशाल्लाह। आगे जी रुकू नंबर 18, 18:32 से 44 तौहीद की दावत है। क़ालत या अय्युहल मलअ वफ़्तूनी फ़ी अम्री, उसने कहा है मेरे सरदारों तुम मेरे मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी काम का कतई फ़ैसला जब तक कि तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं करती। यहाँ से पता चलता है कि थी औरत, हुकूमत भी कर रही थी लेकिन अक्लमंद थी, वन मैन शो नहीं था इसके। हाँ, इन सब ने जवाब दिया हम ताकत और कुव्वत वाले सख्त लड़ने फिरने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप ख़ुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या हुक्म फरमाती हैं। इसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं, अल्लाह अकबर, तो उसे उजाड़ देते हैं। आप कहते हैं कि ख्वाब में अगर कोई किसी मुल्क में बादशाह को दाखिल होता देखे तो उसकी यही ताबीर है। हम इसका बिल्कुल अपोजिट सोचते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और फिर लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं इन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूँगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। आजमाना चाह रही थी कि हज़रत सुलेमान लालची तो नहीं है। फिर जब कासिद हज़रत सुलेमान के पास पहुँचा तो आपने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो, यानी मुझे ख़रीदना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत बेहतर दे रखा है जो इसने तुम्हें दिया, बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो, जा इनकी तरफ वापस लौट जा, हम इनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की इनमें ताकत नहीं, और हम इन्हें जलील व पस्त करके वहाँ से निकाल देंगे। आपने फरमाया, ए सरदारो, मैं तुम में से कोई एक जो इनके मुसलमान होकर पहुँचने से पहले ही इसका तख्त मुझे ला दे। ये क्यों कह रहे थे हजरत सुलेमान? उसको इस्लाम की ताकत और उसको मरूब करना चाहते थे। आज भी लोग देखें ना, दीन के नाम पे लोग लट डाउन समझते हैं। तो इससे उलमा कहते हैं कि हर वो कोशिश, हर वो इहतमाम, तैयारी जिससे दूसरे कुरान को अच्छा समझने लगे, ये भी इंशाल्लाह जिहाद होगा। और आज मुसलमानों को इसकी बहुत ज़रूरत है। खैर, एक कवि है कल जिन कहने लगा, आप अपनी इस मजलिस से उठें, इससे पहले ही मैं उसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर भी हूँ और अमानतदार भी हूँ। यहाँ आप साहिब इल्म शख्स का मुकाबला एक जिस्मानी तौर पे मज़बूत शख्स से सुनिएगा। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा, क्या पलक झपकाएं, इससे भी पहले मैं इसे आपके पास पहुँचा सकता हूँ। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, हाज़ा फ़ज़लु रब्बी। इससे क्या पता चलता है कि ईमान वाले के पास कोई भी नेमत आती है ना, किसी भी किस्म की, दीन दुनिया की, तो वो उसको अल्लाह का फजल करार देता है। यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझको आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफ़े के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और बुजुर्ग, गनी और करीम है। हुक्म दिया कि इस तख्त में कुछ हेर फेर कर दो ताकि मालूम हो जाए कि ये पहचान भी लेती है कि नहीं, यानी ये राह पा लेती है, या इनमें से होती है जो राह नहीं पाते। फिर जब वो आ गई तो इससे कहा या पूछा गया, क्या ऐसा तेरा भी तख्त है? उसने जवाब दिया, गोया कि ये वही है। हमें इससे पहले इल्म दिया गया था और हम मुसलमान थे। क्या पता चला, थी मलका और औरत भी थी। जिसके घर जाएंगे कि ये मेरा बर्तन है भाई, एक दुकान पे एक ही बर्तन एक तरह का थोड़ी होता है। खवातीन बड़ी एक्सपर्ट होती हैं, अपनी चीज़ों को पहचान लेती हैं। अच्छा, कुछ औरतें बेचारी जैसे हजरत सुलेमान ने हेर फेर करके तख्त को बदल दिया ना, असल को थोड़ा सा चेंज किया। अब कुछ औरतें बेचारी अपना भरम रखते हुए अपने कपड़ों को थोड़ा बहुत 19-20 का पलट उलट लेती हैं कि अगली शादी में पहने तो पहचाना ना जाए। और फिर कुछ आप जैसी अक्लमंद दोस्तें कहती हैं, ये वही नहीं है, ये तुमने इसमें ये भूल लगा ली है, अच्छा ये पहले लेस नहीं बेल लगा ली है ना। औरत बड़ी जीनियस होती है, यानी औरतें क्या रखा था, किससे बात कर रहे थे, ये फ़ोन में क्या था, ये मुझे देख के अपने स्क्रीन क्यों पलट ली। अब बताइए, ऐसी औरतों को घर में छोड़कर कोई मर्द बाहर अगर जाता है तो उसको क्या फ़र्क लगता होगा बाहर के पाबंदियों पर और घर की। लेकिन असल बात पता क्या है, औरत की इस खूबी को कैश कराइए, और वो क्या है, जाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा। यानी मैं तो इसके सहर में खोई रहती हूँ कि जितना औरतें अच्छा दीन का काम करती हैं और कर सकती हैं, आम तौर पे मर्द नहीं कर सकते, वो उनका मैदान और है, कर भी सकते। औरत जो है ना फितरी तौर पे उस्ताद है, माँ में रिक्कत है ना, माँ में नरमी है, उस्ताद में भी है। और अगर औरतों को औरतें पढ़ा रही हो तो फिर बताइए क्या इसका कोई तकाबुल है? मर्दों की बात शूं करके ऊपर से गुजर जाती। वो एक बीवी थी तो उसको बड़ा गिला था, उसको बहुत ही शिकवा था कि मियाँ कम बातें करते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता भी होगा घरों में, बेचारे बोर होती थी, उसका दिल करता था बातें करूं बातें करूं, तो जो भी बात करती तो आगे ओके, नहीं ठीक है, फाइन, शुक्रिया, ऐसे करते थे। अब वो कहती मैं किस तरह इनको बातों में लगाऊं। एक दिन उसको बड़ा अच्छा मौका मिल गया, कहती मैं इनसे हजरत यूसुफ का तस्करा करती हूँ, ज़रा मज़े मज़े की बातें करते हैं हम बैठकर। अब वो कहेंगी बात सुने, वो आपने कुरान में हजरत यूसुफ का किस्सा पढ़ा, सुने आपने, क्या क्या था भला? कहते हूँ कुछ नहीं, गुम गए थे। कहा हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? कहते बस फिर मिल गए। तब आप भी ज़रा ये किस्सा सुनिए कुरान का, क्या कहने लगे। इसे उन्होंने रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करती रही थी, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी, यानी अच्छी थी लेकिन बुरे लोगों में फंसी हुई थी। इससे कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे देख कर ये समझ करके ये हौस है, इसने अपनी पिंडलियाँ खोल दी। फरमा ये तो शीशे से मढ़ी हुई इमारत है, यानी शीशों का काम हुआ वह उसके ऊपर। कहने लगी मेरे परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मती और फरमा बरदार बनती हूँ। क्या बात है, इसमें तो एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखाने लगी हूँ। फिरौन के पास मूसा खुद गए और वो नहीं माना, और मलका सबा के पास खुद खुद गया और ये मान गई। वजह मुझे पता है, एक तो आप ये कहेंगे चूंकि ये औरत थी और औरतें बड़ी अच्छी होती हैं ना, बातों में बड़ी जल्दी आ जाती हैं ना, इसके दिल में बड़ाई नहीं थी, तकब्बुर नहीं था, फिरौन के दिल में ये था। कुरान पढ़ के वो लोग कभी नहीं बदलेंगे, जो सुनते हुए भी कि हाँ ठीक है ना, इट्स ओके, आगे चले, बस हो गया ना, बस इज़ फाइन, ख़ास बात तो नहीं है। ये अल्लाह क्या हमें मशवरे देता रहता है, नाउज़ुबिल्लाह। हमेशा टूटे हुए दिल के साथ सुना करें। तो अमल के नुक्ते मशवरा करना है, मलका ने मशवरा किया, अक्लमंद थी। अल्लाह के दीन के गलबे को मकसद हयात बनाना है, दुनियावी मालो दौलत की तरफ झुकाव नहीं करना, और अपने जोरे बाजू पर एतमाद करना है, अपने मातहतों से इनकी महारत के मुताबिक काम लेना है, और किसी की फजीलत को अल्लाह की अता करदा नेमत समझना है। आगे है जी रुकू नंबर 19, आयत 45 से 58, कत्ल की साजिश। एक और कौम, वलकद अरसलना इला समूद अखाहुम, यकीनन हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, फिर भी वो दो फरीक बनकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। आपने फरमाया मेरी कौम के लोगों, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो? तुम अल्लाह तआला से इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? वो कहने लगे हम तेरी और तेरे साथियों की बदशगुनी ले रहे हैं। देखिए हर नबी को ये भी इल्ज़ाम बहुत मिला कि आप हमारे लिए बदशगुनी हैं, बस नऊज़ुबिल्लाह। आपने फरमाया तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के हाँ है, बल्कि तुम फितने में पड़े हुए लोग हो। इस शहर में 9 सरदार थे जो ज़मीन में फसाद फैलाते रहे थे और इसलाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी कस्में खाकर अहद किया कि रात ही को सालेह और इनके घर वालों पर हम छापा मारेंगे और इसके वारिसों से साफ कह देंगे कि हम इसके अहल की हलाकत के वक्त वहाँ मौजूद ही ना थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। उन्होंने मकर यानी खुफिया तदबीर की और हमने भी, और वो इसे समझते ही ना थे। अब देख ले कि इनके मकर का अंजाम कैसा हुआ कि हमने इनको और इनकी कौम को सबको गारत कर दिया। ये हैं इनके मकानात जो इनके जुल्म की वजह से उजड़े पड़े हैं। जो लोग इल्म रखते हैं इनके लिए इसमें बड़ी निशानी है। हमने इनको जो ईमान लाए थे और परहेजगार थे बाल बाल बचा लिया। और लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र करो जबकि इसने अपनी कौम से कहा कि क्या बावजूद देखने भालने के फिर भी तुम बदकारी कर रहे हो? ये क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से आते हो? हक ये है कि तुम बड़ी ही नादानी कर रहे हो। कौम का जवाब इसके सिवा और कुछ न था कि आले लूत को अपने शहर से शहर बदर कर दो, ये तो बड़े पाकबाज बन रहे हैं, यानी थ्रेट किया जा रहा है। बस हमने इसे और इसके अहल को बजुज उसकी बीवी के सबको बचा लिया, और इसका अंदाज़ा तो बाकी रह जाने वालों में हम लगा ही चुके थे, और इन पर एक ख़ास किस्म की बारिश बरसा दी, यानी पत्थरों की। پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بڑی بری بارش ہوئی. کیا پتہ چلا خلاف فطرت کام پر تعجب اور اظہار, یعنی اظہار تعجب اور حیرت ہے اس پہ. کیا پتہ چلا کہ قضائے شہوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا, مردوں کے لیے پوری کی پوری قوم اس کھلی بے حیائی میں شریک تھی. قوم لوط جذبات اور خواہشات نفس اس حد تک مغلوب ہو چکی تھی کہ عقل اور حواس کھو بیٹھی. آپ کے میرے عمل کے نقطے کہ سب سے پہلے اس کام کی قباحت سے اپنی نسلوں کو آگاہ کرنا ہے کہ قوم صرف اس جرم پہ تباہ کر دی گئی, پھر اللہ کو حق ماننا ہے, نخست کے وہم سے بچنا ہے, اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے, غلط عہد و پیمان کرنے سے اجتناب کرنا ہے, مکر و فریب کے منصوبوں کا حصہ نہیں بننا, اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. پچھلی قوموں کی سرکشی کو نہیں دہرانا, پچھلی قوموں کے انجام کو نہیں بھولنا, صرف اللہ کو عبادت کا مستحق جاننا ہے, نبیوں کو اللہ کے برگزیدہ بندے ماننا ہے, نبیوں کی پیروی کرنی ہے, اور اللہ کو ہر قسم کے شرک سے پاک جاننا ہے. اور اس کے بعد آیت 59, ایک آیت صرف اس میں ہے, باقی آگے پڑھیں گے. عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے. آخری آیت اس پارے کی, قل الحمد للہ وسلام علی عبادی, تو کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ بہتر نہیں, بہترین ہے. تو پارے کا پیغام, ایک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے, اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے, اپنی جنت کی تیاری کرنی ہے. اللہ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے.